नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत युद्धोत्तर अरब राज्य और मैंडेट नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। युद्धोत्तर अरब राज्य का नया नक्शा। युद्ध के पहले प्रायः सारा अरब क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य का अंग था, परंतु साम्राज्य के अवसान होने पर कई टुकड़े हो गए एवं नवीन अरब मानचित्र में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उदय हुआ, जिनकी व्यवस्था एक सी नहीं थी। इस कारण युद्धोत्तर अरब क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी अरब क्षेत्रों में विशाल सीरिया प्रांत के स्थान पर अब सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन एवं ट्रांसजॉर्डन नाम के राज्यों का उदय हुआ तथा उन्हें मैंडेट के अधीन कर दिया गया। सीरिया तथा लेबनान पर फ्रांस एवं पैलेस्टाइन एवं ट्रांसजॉर्डन पर ब्रिटेन का मैंडेट शासन स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त इराक पर भी ब्रिटेन को मैंडेट प्राप्त हुआ। इस तरह से उत्तरी अरब का विशाल आयताकार क्षेत्र प्रायः परतंत्र ही बना रहा। इसके विपरीत दक्षिणी में अरब प्रायद्वीप में 5 स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ। हेजाज में शरीफ हुसैन, नजद में अब्दुल अजीज इब्न, यमन में इमाम याहिया, असीर में इद्रिसी मोहम्मद तथा शमर में इब्न रसीद का शासन कायम हुआ। ईरान की खाड़ी एवं हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे शेखों की रियासतें थीं जो ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन थी, परंतु अरब प्रायद्वीप का मुख्य क्षेत्र इन्हीं 5 रियासतों के बीच बटा था तथा उनकी प्रभुसत्ता सार्वभौम थी। इस तरह उत्तरी अरब आयताकार क्षेत्र एवं दक्षिणी प्रायद्वीप का राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक अंतर था। राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास के बावजूद उत्तरी अरब क्षेत्र स्वाधीन नहीं हो सके एवं पाश्चात्य स्वार्थ तथा लिप्सा के शिकार बने रहे। इसका मुख्य कारण उनकी भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति थी। दूसरी ओर अरब प्रायद्वीप असभ्य तथा पिछड़ा होने पर भी इसकी लोलुपता के दायरे में नहीं आया, फलतः यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। इस तरह अरबों के स्वातंत्र्य संग्राम का अंत हुआ तथा अगले 30 वर्षों में उत्तरी अरब राज्यों में भीषण रक्तपात एवं आंदोलन हुए और मैंडेट शासन का इतिहास वास्तव में स्वातंत्र आंदोलन का इतिहास है। उत्तरी अरब राज्यों में मैंडेट। सर्वप्रथम इराक, ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना। प्राचीन काल का मेसोपोटामिया आधुनिक इराक है। दजला एवं फुरात नामक महान नदियों द्वारा प्लावित इराक में ही प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। 7वीं सदी में यह प्रदेश अरबों द्वारा विजित हुआ तथा अब्बासी खलीफों ने इराक में बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अंततः 1638 ईस्वी में इस क्षेत्र पर ऑटोमन का अधिकार हो गया। प्रथम महायुद्ध के काल में यह ऑटोमन साम्राज्य का अंग था। इसमें बसरा, बगदाद एवं मोसुल शहर स्थित थे तथा ईरान की खाड़ी के तट पर स्थित होने का कारण ब्रिटिश के लिए इसका विशेष महत्व था। फलतः युद्ध के आरंभ में ही ब्रिटिश फौजों ने 22 मार्च 1917 ईस्वी को बगदाद पर कब्जा कर लिया तथा 7 नवंबर को मोसुल पर भी इनका अधिकार हो गया। इस तरह युद्ध के समय सारा इराक ब्रिटिश कब्जे में था, अतः ब्रिटेन ने इस पर मैंडेट का दावा पेश किया। अरबों ने इराक को अरब स्वाधीनता के क्षेत्रों में रखा था एवं शरीफ अब्दुल्ला को उसका भावी शासक नियुक्त कर रखा था। सैन रेमो के सुप्रीम काउंसिल के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल 1920 ईस्वी को इराक पर ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना का निर्णय कर दिया गया। मैंडेट की समस्याएं। इस समय इराक का क्षेत्रफल 1,71,000 वर्ग मील था तथा आबादी 3,00,000 के लगभग थी। इसमें शिया, सुन्नी, तुर्क, क्रिश्चियन आदि जातियों एवं अर्ध स्वतंत्र कबीले शामिल थे। इसके उत्तर में टर्की, पश्चिम में सीरिया तथा जॉर्डन, दक्षिण में सऊदी अरब तथा पूर्व में ईरान था। इस नवीन राज्य का जन्म ब्रिटिश स्वार्थों के कारण हुआ तथा इससे अरबों की आशा पर कुठाराघात हुआ। इसके अतिरिक्त नवीन राज्य की सीमा निर्धारण भी एक भीषण समस्या थी। टर्की की नज़र मोसुल प्रांत पर थी तथा सऊदी अरब के साथ भी सीमा विवाद था। विभिन्न नस्लों एवं सांप्रदायों के बीच शांति और सद्भावना कायम करना भी आसान नहीं था। इनका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश शासकों को आरंभ से ही विद्रोह एवं अशांति का सामना करना पड़ा तथा 10 वर्षों के अंदर ही मैंडेट का अंत हो गया। युद्धोत्तर पश्चिमी एशिया में इराक ही सर्वप्रथम मैंडेट शासन से मुक्त हुआ। प्रारंभिक कठिनाइयां। ब्रिटिश मैंडेट की घोषणा के समय इराक का ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ए टी विल्सन था, जिसने दमनकारी नीति अपनाई और निष्ठुरतापूर्वक इराकी देशभक्तों का दमन किया। अतः इराक में अल अहद ने मैंडेट की स्थापना के विरोध का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप जुलाई 1920 ईस्वी में इराक में एक भयंकर विद्रोह का श्री गणेश हुआ। इस विद्रोह ने जिहाद का रूप धारण कर लिया तथा सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक एवं नागरिक कत्ल कर दिए गए और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस विद्रोह में एक भयंकर विद्रोह को दबाने के लिए एक भारतीय सैनिक टुकड़ी भेजी गई और अक्टूबर में कर्नल विल्सन के स्थान पर सर पर्सी कॉक्स नामक एक असैनिक अधिकारी को सिविल कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसने एक सामयिक इराकी सरकार की स्थापना की घोषणा की एवं एक राज्य परिषद की स्थापना कर इसमें इराकियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया। इस परिषद को इराक के लिए एक मौलिक विधि निर्मित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस प्रकार इराकी जनता एवं ब्रिटिश सरकार के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इस परिषद ने स्थान ग्रहण किया। इस समय तक अपार धनजन की हानि के बावजूद विद्रोह दबा दिया गया था। 1921 ईस्वी में ही इराक का शासन कार्य भारतीय सरकार के हाथ से लेकर ब्रिटिश उपनिवेश विभाग के हाथ में सौंप दिया गया। विल्सन के उत्तराधिकारी पर्सी कॉक्स ने ही उच्चायुक्त का पद ग्रहण कर इराक की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया। फैसल का पदारोहण। अरबों के प्रति विश्वासघात के कारण इराक में जो असंतोष एवं उपद्रव हुए थे, उसके कारण ब्रिटिश नीति की ब्रिटेन में भी काफी आलोचना हुई। शरीफ हुसैन के प्रति किए गए अन्याय के कारण बहुत से ब्रिटिश राजनीतिज्ञ क्षुब्ध थे। 22 जुलाई 1920 ईस्वी में फैसल को सीरिया से बहिष्कृत कर दिया गया था। अतः सारे अरब क्षेत्र में विप्लव का वातावरण छा गया था। अब्दुल्ला इस काल में एक फौज संगठित करके सीरिया पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, जिससे स्थिति और भयंकर होने की आशंका थी। यह मित्र राष्ट्रों के विश्वासघात का प्रतिफल था। इराक में धनजन के अपार विनाश के कारण ब्रिटेन में काफी खलबली मची। फलतः इस क्षेत्र में नूतन शांतिप्रिय व्यवस्था की स्थापना के हेतु ही तत्कालीन उपनिवेश मंत्री विंस्टन चर्चिल ने कैरो में 18 मार्च 1921 ईस्वी को अरब क्षेत्रों में स्थित सभी ब्रिटिश अधिकारियों का सम्मेलन किया। इसके अनुसार अमीर फैसल को इराक का तख्त सौंपने का निर्णय किया गया, जिसकी पुष्टि जनमत संग्रह द्वारा करना तय हुआ। अरबों ने इराक का तख्त अब्दुल्ला के लिए नियत किया था, अतः उसे संतुष्ट करने के लिए ऑटोमन सीरिया प्रांत के जॉर्डन नदी के पूर्व का क्षेत्र ट्रांस जॉर्डन नामक राज्य के रूप में सामयिक रूप से सौंप दिया गया तथा सीरिया में अरब शासन की स्थापना होने पर अब्दुल्ला को वहां का शासक बनाने का आश्वासन दिया। अमीर फैसल 23 जून 1921 ईस्वी को इराक पहुंचा तथा 11 जुलाई को राज्य परिषद ने उसे इराक का शाह घोषित किया। विशाल जनमत ने उसका स्वागत किया और 23 अगस्त 1921 ईस्वी को फैसल का राज्याभिषेक हुआ। अब्दुल रहमान अल गैलानी उसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार इराक में एक नवीन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसके आधार पर वहां मैंडेट का अंत हुआ और स्वतंत्रता का उदय हुआ।